भगवान अर्जुन को अर्जुन का शोक निवारण करने हेतु बहुत ही गूढ़ और गहरा रहस्यमय ज्ञान दे रहे हैं। पिछले कुछ 3-4 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान अर्जुन के शोक को देखते हुए बहुत चिंतित हैं और बार बार भगवान श्लोक के अंतिम पंक्ति में अर्जुन के शोक के विषय में कहते हैं। और भगवान इन श्लोकों में, जैसे पिछला श्लोक हमने जब लिया था, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे, कि हे अर्जुन, जो अटल सत्य है उससे भागने की कोशिश मत करो। तो अटल सत्य यह है कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरने वाला है वो फिर जन्मेगा। और इन कुछ श्लोकों में भगवान अर्जुन को जो अटल सत्य समझा रहे हैं, उसे हम हमारी भाषा में ये भी कह सकते हैं, कड़वा सच। जैसे हमने पिछली बार उदाहरण लिया था कि जब कोई जन्मता है तो पिछले श्लोक के अनुसार जन्मते ही वो किसे संकेत कर रहा है? मृत्यु, मृत्यु की तरफ संकेत कर रहा है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा है। एक गांव में एक वृद्ध महिला बहुत पीड़ित, बहुत दुखित थी अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर। तो वो भगवान बुद्ध के पास आती है और अपनी समस्या व्यक्त करती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, समस्या उस वृद्ध महिला की ये थी कि उसकी जीवित अवस्था में उसका जो पुत्र था युवावस्था में गुजर गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा, मुझे भूख लगी है, सबसे पहले तुम मेरी समस्या का निवारण करो, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ चावल खाने, तो चावल लेकर आओ। तब ये वृद्ध महिला सोचने लगी कि मैं यहां पर मेरी ऐसी विकट परिस्थिति लेकर आई हूं और ये साधु महात्मा, इनको अपनी भूख की पड़ी। तो सोचा कि ये होते भी थोड़े रहस्यमय हैं साधु महात्मा, तो पता नहीं इसके पीछे भी कोई गूढ़ कारण होगा। तो वो निकल पड़ी चावल लाने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, रुको, अपने घर से मत चावल लाना, भिक्षा मांग कर ला। ये क्या बात हुई, भिक्षा मांग? हाँ, मैं भिक्षा का अन्न खाता हूं, तो भिक्षा मांग कर चावल ला। ठीक है, भिक्षा मांग कर चावल ला। फिर भगवान बुद्ध ने रोक दिया। दूसरा नियम, ऐसे घर से भिक्षा मांगनी है आपको जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हो। कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो या आगे चलकर भी कभी कोई मृत्यु नहीं होगी, ऐसे घर से भिक्षा मांग कर लाओ चावल के। तो उस समय तो इस वृद्ध महिला को समझ में नहीं आया। फिर जब वो हर एक घर में भिक्षा मांगने गई तो भिक्षा तो सभी देने के लिए तैयार थे, परंतु जो दूसरा नियम था, जब उसने पूछा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो सारे वो फोटो दिखा दिए, चंदन की माला लगाई। ये है अटल सत्य। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये अटल सत्य इस भौतिक संसार में लोग टालना चाहते हैं। अटल का क्या अर्थ होता है? जो न टाला जाए। तो जो अटल सत्य है उसको टालने का प्रयास हर एक जीवात्मा कर रहा है। और उसके पीछे कारण यह है कि स्वाभाविक रूप से जीव जो है वो नित्य जीता है, आत्मा सच्चिदानंद। तो जो सत अंश है आत्मा का वो है नित्यता आत्मा की, और वो नित्यता आत्मा की वो शरीर के द्वारा हासिल करना चाहता है, तब शोक में गिरता है अर्जुन की तरह। तो बहुत सरल है भगवान का ये सांख्य योग या आत्मज्ञान, बहुत सरल है कि नित्यता हासिल करनी है, नित्यता तो है, हासिल करने की जरूरत ही नहीं। हर एक जीव नित्य है, परंतु शरीर के द्वारा उस नित्यता को हासिल करने की कोशिश मत करो। तो इसलिए भगवान अब अर्जुन के इस शोक को देखते हुए कि अर्जुन जैसा व्यक्ति, एक योद्धा, और वो भी मेरा पार्षद, और वो भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जहां पर मैंने इसे नियुक्त किया है धर्म की स्थापना करने के लिए, वो तो उसे दिख नहीं रहा, और इसे केवल यही दिख रहा है कि मेरे सगे संबंधियों का क्या होगा। तो भगवान इसे कहते हैं संकुचित विचार, नैरो माइंडेडनेस, और भगवद गीता हमें ब्रॉड माइंडेड बनाता है। तो इसलिए आज का श्लोक भी भगवान अर्जुन के शोक की चिंता में ये कह रहे हैं, अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितने भी ये भूतानि, भूतानि का अर्थ है जिन्होंने देह धारण किया है या देहधारी, तो जितने भी देहधारी हैं, एक समय ऐसा था जब वो व्यक्त थे, व्यक्त आदिनी, जब वो व्यक्त थे, नहीं, जब वो अव्यक्त थे, क्षमा करना, अव्यक्त थे, ये जो देहधारी जितने भी हैं, एक समय था जब वो अव्यक्त थे, अब मध्यानि, ये मध्यान अवस्था में व्यक्त, उनका व्यक्तिकरण दिख रहा है, दिख रहे हैं वो कि हां व्यक्त हैं अब वो, और आगे चलकर निधनान्येव, आगे चलकर होगा कि फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो बहुत सरल सिद्धांत है, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स वर अनमैनिफेस्टेड बिफोर, मैनिफेस्टेड नाउ एंड विल बिकम अनमैनिफेस्टेड इन फ्यूचर। तो यहां पर भूत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा भगवान करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये सर्वसाधारण सा सिद्धांत तुम्हें कैसे समझ में नहीं आ रहा, तत्र का परिदेवना, क्यों शोक कर रहे हो तुम और किसके लिए शोक कर रहे हो, जो अव्यक्त था या जो अव्यक्त हो जाएगा या जो अभी तुम्हारे सामने व्यक्त है, किसके लिए शोक कर रहे हो। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है कि हम हमारे भौतिक जीवन में, इस भौतिक संसार में, हम किसे महत्ता देते हैं? वो वस्तु जो अव्यक्त है और अव्यक्त होने वाली है, या वो वस्तु जो हमारे सामने अभिव्यक्त है? जैसे कि अर्जुन, अर्जुन का शोक केवल यही है, ये जो मेरे सामने व्यक्त हैं, व्यक्ति, ये व्यक्ति मेरे सामने जो व्यक्त हैं, ये नहीं रहेंगे। मानो भगवान पूछें कि इनके जन्म से पहले भी ये व्यक्त नहीं थे तुम्हारे लिए? मेरे लिए तो थे, लेकिन अर्जुन तुम्हारे लिए तो नहीं थे ना, इनके जन्म से पहले और तुम्हारे जन्म से पहले, और इनके मरण के पश्चात और तुम्हारे मरण के पश्चात फिर से ये अव्यक्त हो जाने वाले हैं। तो ये इतना सारा बवाल खड़ा कर रखा है तुमने बीच में, और हम सब भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं कि जो भी वस्तु हमें व्यक्तिगत रूप से दिखती है, या जिसका अनुभव हम हमारे इन व्यक्त इंद्रियों से करते हैं, कितनी आसक्ति उसमें हमारी जागृत हो जाती है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार से हैं। भगवान कह रहे हैं, सभी जीवात्माएं जन्म के पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद व्यक्त होते हैं, जन्म के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। क्षमा करना, मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। अर्जुन के लिए भगवान भारत इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्जुन को भारत पुकार रहे हैं। कुछ जीवात्माएं मृत्यु के बाद भी लापता नहीं होते, और कौन सा ऐसा शोक है जो आवश्यक है हमारे जीवन के लिए? और श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में किस प्रकार से आज के श्लोक की व्याख्या की है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम, सभी जीवात्माएं जन्म के पूर्व अव्यक्त रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो तुरंत उसे स्थूल शरीर नहीं प्राप्त होता। मनुष्य जब उनकी मृत्यु होती है तो जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो आत्मा को लेकर, जैसे मान लो ट्रे में आत्मा को लेकर ढूंढता है दूसरा शरीर। तो जो कैरियर है आत्मा का, वो है सूक्ष्म शरीर। तो अब सूक्ष्म शरीर ने आत्मा को ले रखा है और स्थूल शरीर ढूंढ रहा है। तो कर्मों के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि तकरीबन 365 दिन लग जाते हैं, सब जो भी उसका अकाउंटिंग वगैरह ठीक करने के लिए, सब ठीक से हुआ कि नहीं उसका लेखा जोखा। कौन करते हैं लेखा जोखा? कौन करते हैं? हाँ, जिन्होंने पुण्य किया उनके लिए भी। आज मुझे एक भक्त ने SMS भेजा कि एक पेशेंट, वो कोमा से बाहर आया और डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। वो कहता है, मैं डॉक्टर नहीं, मैं चित्रगुप्त हूं। डॉक्टर गया कब का, तुम भी गए, तुम यमलोक में हो। तो मरने के पश्चात फिर जो भी सब बैलेंस शीट, एसेट्स लायबिलिटीज, जो भी वो बैलेंस होना चाहिए। तो तब तक ये कह सकते हैं कि कोई शरीर नहीं मिला है तो अव्यक्त है, केवल सूक्ष्म शरीर के साथ वह आत्मा विचरण कर रहा है तो अव्यक्त है, और फिर मरने जन्मता है, शरीर फिर मिलता है, और मरने के पश्चात वही दशा, फिर जब तक कि भगवत धाम नहीं जाता। और दूसरी अवस्था है अज्ञात अवस्था। अब देखिए अज्ञात अवस्था हम इस प्रकार से जानेंगे कि ये जो अभी स्थूल शरीर हमें प्राप्त हुआ है, कि कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई किसी कोई जानवर योनि में पैदा, जो भी कुछ शरीर प्राप्त हुआ हमें, तो ये स्थूल शरीर के पहले भी हमें एक स्थूल शरीर मिला था पिछले जन्म। हम में से कितनों को याद है कि कौन सा वो शरीर था, कहां हम पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्या क्या हमने कर्म किए? कोई ज्ञान है? और ये शरीर खत्म होने के बाद अगला शरीर क्या प्राप्त होने वाला है, कुछ पता नहीं। अच्छा, ये पूछा जाए कि हमारी अज्ञात अवस्था कितनी गहरी है, कि ये शरीर का क्या होने वाला है 5 साल बाद या 1 साल बाद, ये भी नहीं पता। पता है, हम सब बैठे हैं, 5 साल बाद हमारा शरीर किस दशा में होगा? 5 साल छोड़ दीजिए, अभी हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है क्या पता, अंदर क्या क्या कुछ नहीं हो रहा क्या पता हमें हमारे शरीर के। तो ये जो अज्ञात अवस्था जीव की है, ये अज्ञात अवस्था जीव के लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। यदि पूछा जाए कि फायदेमंद कैसे, अज्ञात अवस्था हम लोगों की हमारे फायदे में, हमारे हित में कैसे? आगे होने वाली बीमारियों का पता नहीं चलेगा, इसलिए इग्नोरेंस इज ब्लिस। अच्छा, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि मान लीजिए हमारे जितने पिछले कर्म हमें भगवान याद दिला दे, पिछले योनियां याद दिला दे, तो बहुत सुखी और शांतिमय जीवन रहेगा हमारा। कई बार तो इस जन्म में भी जो हम अपने भूतकाल के विषय में सोचते हैं तो कांप जाते हैं, क्या वो ऐसी घटना हुई मेरे साथ, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ, और ऐसी बीमारी हुई थी, और बाल बाल बच गए। तो इस जन्म में भी कोई याद नहीं करना चाहता ऐसी सारी चीजें। तो सोचिए कि केवल यदि मृत्यु, पिछला जन्म तो भूल जाइए, केवल वो पिछला जन्म खत्म हुआ कैसे, मृत्यु प्राप्त हुई हमें, वो मृत्यु कैसे प्राप्त हुई, यदि वो भी याद आ जाए तो रात में नींद नहीं आएगी। इतना गरुड़ पुराण कहते हैं, कितने 40,000 बिच्छू काटने के जैसा, 40,000 बिच्छू, और वो भी एक के बाद एक नहीं, एक साथ, ऐसे नहीं वो लाइन में खड़े होते हैं, एक गया फिर दूसरा है, 40,000 बिच्छू एक साथ, वेदना मृत्यु के समय किस प्रकार की वेदना होती है, और फिर जन्म की वेदना। तो हां, भगवान अपोहनम च, इस सब की विस्मृति, और जैसे प्रभु जी ने कहा कि आगे चलकर भी क्या होने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि भौतिक संसार में हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। यहां मान लीजिए किसी कैदी को पूछो कि आपका भविष्य क्या है कैद खाने में, हां कल संडे, तो संडे तो आपके लिए क्या, संडे फीस्ट होगा? तो केवल यदि मन में वो इस बात से खुश हो जाए कि कल संडे, लेकिन जेल खाने में चाहे संडे हो या मंडे हो, दंडे दंडे पड़ते हैं। अब फायदेमंद है, अब नुकसानदायक कैसे है, ये समझ में आया आपको कि विस्मृति हमारे फायदे में क्यों है और कैसे है? अब नुकसान कैसे है, इस विस्मृति के नुकसान क्या है? हाँ, जो गलतियां हम करते फिर रिपीट करते रहते हैं, ये अच्छा मुद्दा है कि जो हमने गलतियां की और हमारी आदतों की वजह से, कई बार समझ में नहीं आता कि वो आदत शुरू कहां से हुई, कौन सी योनि में हमने वो बुरी आदत हमारे अंदर डाली। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो भी कुछ आदतें अब हैं वो केवल इसी जन्म से हमें प्राप्त हुई है, बहुत से पिछले जन्मों से हम क्या कुछ नहीं करते आए, ऐसी ऐसी करतूतें हमने की हैं जिनके वजह से अब वो इंप्रेशन बैठ गया और वो आदतें अब बाहर आती रहती। और क्या नुकसान? हाँ, भगवान से, हाँ भगवान से, कृष्ण भूलिया जी भूलिया तुम्हारे, कि भगवान को हम भूलकर इस भौतिक संसार में याद कर रहे हैं उन वस्तुओं को जो हमें भगवान को और भुला रही, ये और डबल इंपैक्ट। तो इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन नुकसान क्या हो रहा है कि तुम्हारी नजर केवल जो भीष्म द्रोण ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं इनकी व्यक्त अवस्था को जो तुम जो देख रहे हो केवल उसके ऊपर जो तुम गौर कर रहे हो और तुम इनके पूर्व और इनके भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, ये नुकसान। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर। क्या पास्ट अनमैनिफेस्ट, फ्यूचर अनमैनिफेस्ट। तो ये जो अभी सामने मैनिफेस्ट है बस उसी के अंदर तुम इतना आसक्ति अपनी बनाए रखे हो। तो इसलिए अज्ञात अवस्था की स्थिति के वजह से भी जीव बद्ध अवस्था में रहता। अब एक कैदी जो है, ये उदाहरण अक्सर प्रभुपाद भी दिया करते थे, जैसे कि एक कैदी को कोई वर्दी पहनाता है, तो जब कैदी को वर्दी मिलती है उसको नंबर मिलता है, जो भी बिल्ला नंबर वर्दी नंबर मिलता है, तो जब कैदी को वर्दी मिलती है तो मान लो वो कैदी 10 साल वो वर्दी को पहनता है, तो कैदी को यदि पूछा जाए कि ये वर्दी किसकी, तो कहता मेरी वर्दी, लेकिन ये नहीं पता कि उससे पहले ये वर्दी और किसी कैदी ने पहनी थी। ऐसा तो नहीं कि उसके लिए नया, उसको टेलर के पास ले जाते हैं तुम्हारे लिए नई वर्दी तुम्हारे माप के अनुसार तुम्हारी फिटिंग के अनुसार नहीं, और ये 10 साल बाद ये वर्दी वहीं छोड़ के जाएगा और कोई पहनेगा उसे। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि जब व्यक्त अवस्था में वो कैदी उस वर्दी को धारण करता है तो उसी में वो आसक्त रहता है, मैं और मेरी वर्दी, ये नहीं जानता कि ये वर्दी किसी और का महाप्रसाद है। उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, ये विभिन्न जो शरीर हैं, ये सब हम स्वयं तो हैं कैदी, सबसे पहले ये जान लीजिए हम सब कैदी हैं इस भौतिक संसार के दुर्ग में, और हमें जो शरीर प्राप्त हुए हैं जिन पे हम इतना गर्व करते हैं ये वो वर्दी के समान है जो किसी भौतिक प्रकृति ने वो उठा के दे दी, चलो ये इसके लिए ये वर्दी। ये उदाहरण को और गहराई से यदि ये देखा जाए तो जब कोई, बहुत सारे कैदी जब एक जेल खाने में जाते हैं तो उनके साइज के अनुसार वो लोग देखते हैं, ठीक है इसको मीडियम दे दो, इसको लार्ज दे दो, इसको स्मॉल दे दो, है ना। तो वैसे ही भौतिक प्रकृति वो पहले से वर्दी बनाकर रखी हुई है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो भी कुछ, और फिर कर्मों के अनुसार जैसे उनके कर्म होते हैं कर्मों के अनुसार फिर उन्हें उठा उठा के देते रहते हैं। और फिर जैसे ही हमें कोई हमारी वर्दी मिल गई हमारे थोड़ा फिटिंग साइज के अनुसार तो हमें लगता है बस ये तो कितना अच्छा मैं लग रहा हूं, है ना वर्दी में। ये नहीं जानते कि फिर ये वर्दी छोड़नी है। तो वैसे ही अनगिनत योनियों में हम केवल ये शरीर धारण कर करके लेके छोड़ना, फिर लेना फिर छोड़ना, फिर लेना फिर छोड़ना। तो इसलिए ये एक उदाहरण दिया गया है आज के श्लोक के संदर्भ में कि कैसे वो व्यक्त अवस्था में वो वर्दी जो है उस कैदी को आसक्ति में डालती है। एक और उदाहरण दिया जाता है कि हमारी व्यक्त अवस्था ट्रेन के यात्रियों की तरह है। अब पिछले उदाहरण में हमने क्या देखा कि व्यक्तिगत रूप से उसे एक वर्दी मिली है जिसके संपर्क में वो आता है। अब जब हम एक वर्दी अर्थात एक शरीर दूसरे शरीर के संपर्क में आता है, परिवार है ना, हम किसी परिवार में पैदा होते हैं तो ये जो हमारी एक वर्दी मिली हमें वो वर्दी अब संबंधित हो जाती है कितनी और अन्य वर्दियों के साथ, है ना। तो मां बाप हैं, भाई बहन हैं, फिर और उसका विस्तार होता रहता है। तो फिर ये उदाहरण दिया गया है कि ट्रेन के यात्री। अब देखिए ट्रेन में हम सब सफर किए हैं तो हर रोज एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए पूरी ट्रेन का कितना मैनेजमेंट रहता है। देखिए पूरा उनका बुकिंग और केवल उसी दिन एक दिन के लिए, सोचिए एक दिन के लिए कितना उनका पूरा मैनेजमेंट रहता है। वो ट्रेन का ड्राइवर और उसका उसमें ईंधन भरना और फिर वो पैंट्री और सबके लिए, और वो सब यात्री एक दिन के लिए, जो भी एक दिन का सफर होगा तो एक दिन के लिए वो सब एक साथ आते हैं और पूरा ऐसा लगता है कि पूरा साम्राज्य वहां पर बिछ रहा है। अब एक दिन की यात्रा के लिए, कई बार दो तीन घंटे की यात्रा के लिए सब अपने अपने सामान यहां वहां पर फिट करते हैं, उसको लॉक करते हैं जैसे वहीं पे अभी बसेरा होने वाला है। और उसमें फिर देखिए अब ये ट्रेन का उदाहरण भी यदि हम और एनालाइज करें तो उसमें अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कई लोग जनरल हैं, घुसे हुए हैं। तो अब हम ये जो ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, कोई बिना रिजर्वेशन घुस गया अंदर, चालू टिकट लेके घुस गया, कोई टिकट ही नहीं लिया, तो जो भौतिक प्रकृति देखती है कि बिना कर्मों के इसको कुछ मिल गया है तो बाहर निकालो इसको ट्रेन से, उसको फाइन मिलता है फिर। तो कई बार आप देखो बहुत ही आरामदायक, ये एक ट्रेन के अंदर पाश्चात्य देश में इस प्रकार की ट्रेनें होती, अंदर से एकदम सोफिस्टिकेटेड और कंफर्टेबल लग्जूरियस। तो कई बार जीव ऐसे परिवार में पैदा होता है कि बहुत ऐश्वर्यशाली परिवार है लेकिन है वो ट्रेन का बोगी, है वो ट्रेन का बोगी। और कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े परिवार होते हैं, ऐसे जॉइंट फैमिली में कोई रहता है, कितने सारे अन्य यात्रियों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। कई बार कम यात्री होते हैं, परिवार वाले कम होते हैं, इक्का दुक्का बस यहां वहां। अब कई बार लोकल ट्रेन इस प्रकार की, भारत की लोकल ट्रेन तो यदि आपको देखनी है तो अगला पिक्चर उसका आने वाला है अभी। तो कई बार जो लोकल ट्रेन होती है उसमें बहुत गर्दी और भीड़ में यात्रा करना पड़ता है, आराम कम रहता है और केवल बस निभ जाए यात्रा, कट जाए, उसके बाद में पहुंचे अपने गंतव्य स्थान। और कई बार स्थिति ऐसी होती है मेरा भारत महान। कई बार स्थिति ऐसी होती है ट्रेन के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे, पता नहीं नीचे आते हैं कि नहीं, ऊपर तो रहते हैं। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि हम इस भौतिक संसार में जब अन्य परिवारों में पैदा होते हैं तो कितने समय हम उस परिवार में रहते हैं। इफ वी कैलकुलेट इन कनेक्शन विथ एटर्निटी हाउ मेनी इयर्स वी स्टे इन वन फैमिली, कितने 60 साल 70 साल, कलयुग में तो और भी कम होते जा रहे हैं, 80 90 साल। तो एक साथ जब हम रहते हैं तो उसी में जैसे अर्जुन का यहां पर शोक कि मैं जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इनको जानता हूं इतनी अच्छी से, कब से भगवान मुझे कब से जानते थे, कितने सालों से जानते हो, और मैं ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और तुम भी अर्जुन, तुम सबके आत्माओं को नित्य काल से जानता हूं, कहां कहां तुम कौन सी यात्रा में कौन से भोगी में जाकर आए। तो वही ये बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है कि मान लो कि कोई परमानेंटली इसमें ही रह रहा है भोगी के अंदर ही, कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे नाम की सीट है ये, इधर ही मुझे मेरा सेटल होना है मुझको इसके अंदर, भोगी के अंदर सेटल होना है, इस सीट के अंदर सेटल होना है, ये मेरी सीट है, मेरी बर्थ है। बोलेंगे भाई वो भी अच्छा है, बर्थ फिर डेथ, जैसे ही डेस्टिनेशन हो गया चलो निकलो बाहर। तो यहां पर इस उदाहरण से जो भगवान अर्जुन को संकेत दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि तुम ये जो एक साथ आए, जैसे कि प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत में कि होटल में जब आते हैं एक साथ बैठकर खाते हैं, जो ग्राहक आकर खाते हैं तो कितने समय के लिए वो एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार से परिवार में होता क्या है कि कोई पैदा हुआ है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई साथ में है कुछ समय के लिए, ये उतने ही अस्थाई हैं जितना कि अस्थाई ये शरीर है जिसके अंदर जीव कुछ समय के लिए वो फड़क रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते थे द लिविंग एंटिटी इज फ्लैपिंग जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स विद इन दिस मटीरियल बॉडी। अब कुछ उदाहरण हैं जिसमें जीवात्माएं मृत्यु के बाद भी वो लापता नहीं होते। ये वो जीवात्माएं हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति की। तो यदि अर्जुन को ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि ये लापता न हो या ये दृष्टिगोचर न हो मेरे आंखों के दृष्टि के सामने से, तो अर्जुन को भक्ति करनी होगी। जैसे इसमें उदाहरण अर्जुन के पिताजी का ही है, महाराज पांडु। महाराज पांडु इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के पश्चात ये स्वर्ग का वास इन्हें मिला, तो वहां से वो नारद मुनि से मिले, वहां पर नारद मुनि से मिले और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि जाओ और युधिष्ठिर महाराज को कहो कि राजसूय यज्ञ करे जिससे भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो, जिसके वजह से इन्हें राजगद्दी मिलेगी। तो महाराज पांडु ये संदेशा युधिष्ठिर महाराज तक पहुंचाए। सोचिए कि महाराज पांडु अब मर चुके हैं और मरने के पश्चात अपने अगले जन्म में स्वर्ग से वो ये मैसेज भिजवा रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज अपने पिताजी का ये मैसेज प्राप्त करके वो राजसूय यज्ञ करते हैं। तो ये महाराज पांडु, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त, तो उन्हें ये सुविधा स्पेशल प्रेरोगेटिव भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ था। एक और उदाहरण महाराज दशरथ का, रावण का वध हो चुका है, अब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं, उनका राज्याभिषेक हो चुका, अब वो राजा बन चुके। हां, राज्याभिषेक के समय बहुत से स्वर्ग से देवता आए और उन देवताओं के बीच में महाराज दशरथ भी आए प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में, और प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी को पहचान लिया, उन देवताओं में अपने पिताजी को पहचान लिया, और फिर महाराज दशरथ उस वात्सल्य भाव में प्रभु श्री राम को उन्होंने अपने गोद में बिठाया, और गोद में बिठाकर सहलाते हुए महाराज दशरथ प्रभु श्री राम से कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो इतनी तकलीफ दी, 14 वर्ष वन में जाना पड़ा तुम्हें, क्षमा कर दो, मैं अपने आप को अब तक माफ नहीं कर पाया हूं। तो ये उनका आदान प्रदान हुआ। महाराज दशरथ फिर से जब अयोध्या आए, तो ये उदाहरण है इन दो महानुभावों का, जो मृत्यु के पश्चात भी उनके सगे संबंधियों से लापता क्यों नहीं हुए, भक्ति के कारण। तो भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन तुम यदि यही चाहते हो तो तुम मेरे आदेशों का पालन करो, और वही है भक्ति, तब जाकर ये कभी लापता नहीं होंगे तुम्हारे लिए, नहीं तो ये अंततः तो होने ही वाले हैं। एक उदाहरण मुझे एक ईमेल मिला था, तो कुछ इन उदाहरणों से भी हम आज का श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई हरे कृष्णा के भक्त तो नहीं है, आपको लग रहा हो शेव वेव करके बैठे, तो ये इन्होंने एक बहुत ही अनोखी कलाकृति, इस व्यक्ति ने, इनका नाम है मिस्टर विपुल, एक अनोखी कलाकृति इन्होंने बनाई, ये है रोल्स रॉयस गाड़ी। कैसी लग रही है आपको, रोल्स रॉयस? तो आप लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या कलाकृति है, ये बटर से बना है इसने, बटर मक्खन, ये इसने मक्खन से बनाई। तो सोचिए उसने कितना दिमाग लगाकर ये मक्खन पिघले नहीं, और कैसे उस मक्खन में कार्विंग करके कितना उसने दिमाग लगाया, ये सब कुछ इज ऑल मेड ऑफ बटर, सब मक्खन से बना हुआ। तो अभी आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है, वो गाड़ी चलाने की इच्छा हो रही कि खाने की इच्छा हो रही, वो रोल्स रॉय खाएंगे कि चलाएंगे? तो हालांकि इसने ये कलाकृति, इस व्यक्ति ने ये सारी कलाकृतियां मक्खन से बनाई है, लेकिन कुछ काम की नहीं है। हाँ ठीक है, कला का प्रदर्शन हुआ है, लेकिन जो मक्खन का कार्य है वो अलग है। तो जब तक अभी किसी को भूख लगी तो वो गाड़ी के अंदर बैठने से अच्छा, उसको देखने से अच्छा तो ब्रेड पे लगा के खाएगा उसको। तो इस उदाहरण से ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा शरीर भी है, जैसे कि ये मक्खन है, मक्खन के विषय में अभी आपने जब देखा तो आपको क्या लगा, आपके आपकी दृष्टि ने जब उस मक्खन को देखा तो आपकी दृष्टि क्या देख रही है, ये गाड़ी है, ये कोई घर टाइप बनाया हुआ है ना। लेकिन जब मैंने कहा कि ये मक्खन है तो तुरंत आपकी दृष्टि में थोड़ा परिवर्तन आ गया कि गाड़ी है लेकिन मक्खन की गाड़ी है, घर है लेकिन मक्खन का घर। तो अब यदि ये पूछूं कि उस गाड़ी बनने से पहले वो क्या था, मक्खन, मक्खन से पहले क्या था, दही, दही से पहले क्या था, दूध, दूध से पहले घास, घास ना, घास से पहले मिट्टी, ये मिट्टी है। ये एक कंपटीशन हुआ था, ये सब सैंड कैसल्स जो समुद्र के तट पर बच्चे बच्चे छोटा छोटा बनाते ना सैंड कैसल, ये बड़े बच्चे बनाए इन्होंने, बड़े बच्चों ने बनाए। तो ये कंपटीशन हुआ था कि ये मिट्टी से देखिए क्या कुछ नहीं बनाया है, ये सारे देखो हंस रहे हैं, कोई है ना चिल्ला रहा है, जो भी कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई किला है लेकिन बनाया हुआ बालू रेती से केवल उसी का है। यहां महाराजा जी बैठे हैं और इतना बड़ा ये कैसल दिख रहा है, लेकिन बनाया किससे? रेती से। और हम सब जानते हैं कि ये जो रेती के घर हैं ये कितना कब तक टिकते हैं? एक लहर और जितना ये साम्राज्य खड़ा किया सब खत्म। तो पॉइंट ये है कि जैसे हम यदि उसके भूतकाल में जाकर देखें या इसके भविष्यकाल में जाकर देखें तो क्या समझ में आएगा कि वो जो मक्खन या ये बालू की रेती ये फिर सब उसी में मिल जाने वाली है। और अभी इसको एक ढांचा दिया, तो ढांचा जब हम देखते हैं, जब इस प्रकार से देखते हैं तो लग अच्छा कितना सुंदर। तो वैसे ब्रह्मा जी ने ये आठ तत्वों को लेके एक ढांचा दे दिया हमें, ये शरीर। और इसलिए यदि हम अपने शरीर को भी देखें तो हमारा शरीर पहले उस अवस्था में, फिर अंततः मृत अवस्था में, वो सब कुछ है अंदर बाहर सब हाड़ पसलियां जो हैं ये सब से, बीच की जो ये जो व्यक्त अवस्था है जब एकदम तंदुरुस्त हमारा शरीर रहता है तब लगता है कि हाँ मैं जी रहा हूं, और ऐसे ही जीवन चलता रहे। लेकिन ये बाकी सारी जो अवस्थाएं हैं जो भूतकाल की और जो भविष्यकाल की, वो अवस्थाएं भी एक सत्य है, अटल सत्य, जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। कि जैसे जो बच्चा जब वो रेत का घर बनाता है या रेत का बंगला बनाता है तो बच्चा उसमें कितना आसक्त हो जाता है, मग्न हो जाता है, वो पूर्ण रूप से कि यहां पर मैंने अब लिविंग रूम बनाया, यहां पर बेडरूम बनाया, बालकनी बनाया, ये बनाया। लेकिन जो बड़े उनके मां बाप बैठे हैं वो हंसते हैं क्या है, और उन मां बापों के ऊपर प्रकृति हंसती, क्योंकि मां बाप ने भी वैसे थोड़ा बड़ा रेती का घर बनाया है सीमेंट वीमेंट लगा के, है ना, वो भी काल की एक लहर से वो भी जाने ही वाला है। तो जैसे वो बच्चे वो रेती के घर में इतना आसक्त रहते हैं, तो बच्चों के जो माता पिता है वो उनके बड़े घर में उतना ही आसक्त है। तो इन उदाहरणों से ये समझ में आ रहा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कि जो भी वस्तु व्यक्त दिखती है तुरंत हम उससे आसक्त हो जाते। जैसे आजकल मार्केटिंग टेक्निक क्या है, बार 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 दिखाते रहो बिलबोर्ड्स में, होर्डिंग्स में, एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में, सामने आंखों के सामने जितना वो दिखेगा उतना ज्यादा आप आसक्त होते जाओगे उसके अंदर। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे प्रभुपाद ने जो व्याख्या की है उसमें हम चर्चा करेंगे कि ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये जो हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक साइकी है हमारा, वो कैसे कार्य करता है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को भारत नाम से पुकार रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन भरत वंश के एक सदस्य हैं। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को ये ज्ञात कराना चाहते हैं कि हे भारत, हे भारतवंशी, तुम्हारे वंश में कितने पैदा हुए, कितने मरे और कितने और पैदा होंगे तुम्हें पता है? लिस्ट मालूम है कितने पैदा हुए और कितने आगे पैदा होंगे? जैसे कई बार होता है ना वो तीर्थ स्थानों पर वो जाओ आपको कोई एक पंडित सब लिख के रखता है कि हमारे पूर्वज कौन कौन थे, ये मल वो मल, ये चंद वो चंद, सब नाम लिखे होते हैं, पता भी नहीं ये हमारे क्या पिता के पिता, पिता के पिता के पिता पिता। और हमको क्या शोक होता है? अभी जैसे मान लीजिए कि 10 हमारे पिता के ऊपर और 10, पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, फादर रेस टू 10। तो उनके विषय में कोई वो पोथी से निकाल कर हमें बताए कि ये इस सदी में इनके मृत्यु हुई, क्या हमें रोना आएगा? क्योंकि कभी हमने देखा नहीं, जाना है नहीं, कभी सुना है नहीं, बता रहे हैं पता नहीं है कि नहीं, हमारे इसमें से निकाला कि कहां से निकाला, कौन से परिवार से निकाला। और आगे चलकर 50 पीढ़ी आगे चलकर वो भी तो मरने ही वाले हैं जो पैदा होंगे आगे, तो उनके विषय में क्या हम अभी शोक करते हैं? तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे वंश को देखो हे भारत, तुम्हारे वंश को देखो, तुम्हारे वंश में कितनों को तुम जानते थे, कितनों को तुम आगे जानोगे, इनको लेके पकड़े हो तुम केवल, ये जो सामने दिख रहे हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को भारत पुकार रहे हैं। प्रभुपाद ने अपनी व्याख्या में कमेंट्री में लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं वेदर वन इज अ बिलीवर और वेदर वन इज अ नॉन बिलीवर, दिस वर्स इज वेरी साइंटिफिक, वेरी प्रैक्टिकल, चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर बना हुआ है रसायनों से, केमिकल से, तो चाहे वो नास्तिक भी हो तो केमिकल्स खत्म हो रहे हैं या केमिकल्स प्राप्त हो रहे हैं, उससे क्यों प्रभावित होगा? जैसे कि एक हमारे सन्यासी उदाहरण दे रहे थे कि आप मंजन करते हो, मंजन करके वो सब कुल्ला करके बहा देते हो, क्या उसके बारे में चिंता करते हो? अरे गया वो, कहां जा रहा है वो, वो मंजन मैंने जो खरीदा था अभी वो बहता हुआ जा रहा है नाली में, विल यू लेमेंट फॉर दैट टूथपेस्ट विच इज गोइंग डाउन द ड्रेन? तो ये शरीर भी उसी प्रकार से रसायनों का बना हुआ, मृत्यु के समय ये भी किसी न किसी प्रकार से इस भौतिक प्रकृति में विलीन होने वाला है, जैसे कि वो टूथपेस्ट बहके जा रहा है। अब आप बोले क्या शरीर को टूथपेस्ट बोल रहे? प्रभुपाद कह रहे हाँ भौतिक रूप से तो वही है ना। तो ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि कोई कहे ऐसे कैसे आप कह सकते हो, वो तो है ना व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति कौन है? वो जो जीवित अंदर है वो है ना, और वो तो मरने नहीं वाला है, तो क्यों शोक कर रहे हो, है ना? तो तुम शोक उसी टूथपेस्ट का कर रहे हो जो कि पहले से मरा हुआ है। तो इसलिए यहां पर यदि फिर से हम शरीर का उदाहरण लें, हमने ये ह्यूमन साइकी लिया आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब जैसे एक परिवार में जब कोई शिशु पैदा होता है तो अब भौतिक प्रकृति जानती है, कर्मणा दैव नेत्रेण, भौतिक प्रकृति जानती है कि वो जीव कहां कहां से घूम घाम के वो इस परिवार में पैदा होने वाला, और वो पैदा होने से पहले उस परिवार वालों को कुछ पता नहीं कि कौन सा जीव कहां से, कौन सी योनि से, कौन सी ग्रह से, कौन से ब्रह्मांड से आ रहा है, कुछ पता नहीं। तो इसलिए कुछ आसक्ति नहीं रहती क्योंकि साइट पे नहीं है, अभी हमारे आंखों के सामने नहीं है। यहां तक कि जब वो गर्भ में भी रहता है तब केवल इतना पता रहता है कि है कोई तो अंदर, है ना, इतनी आसक्ति नहीं। जैसे ही वो बाहर आ जाता है गर्भ से, फिर देखिए देखने के बाद कितना सुंदर दिखते, देखो आंखें, देखो नाक, देखो कितना सुंदर है ना। तो जैसे सामने दिखता है तो फिर शुरू हो जाता है सब बर्थडे सेलिब्रेशन ये वो, फिर और खत्म हो गया। उसके बाद में कौन उनको याद करता है, इतने सारे जो हमारे पूर्वज चले गए, वो धीरे धीरे वो जो बस कुछ समय के लिए वो शोक बना रहता है, फिर उसके बाद में आउट ऑफ साइट चला गया, आउट ऑफ माइंड, कभी कभी याद भी नहीं रहता है उनका श्राद्ध चला होने वाला है, कुछ करना भी है उनके, वो भी याद नहीं रहता। जैसे हम एक कथा बोला करते थे, एक साधु महात्मा राजा के दरबार में आए, राजा को पूछते हैं कि राजन धर्मशाला में जगह मिलेगी आपके? राजा, धर्मशाला? अरे ये मेरा राज दरबार है भाई, धर्मशाला बोलते हो? तो महात्मा पूछते हैं कि आपसे पहले कौन थे यहां राजा? बोले मेरे पिता थे, उनसे पहले उनके पिता थे, और आपके बाद मेरा बेटा होगा ना, और क्या? तो यही तो होता है धर्मशाला में, एक आता है रहता है जाता है, दूसरा आता है वो रहता है जाता है, और क्या, धर्मशाला ही तो है। तो अब देखिए, यदि कोई हमें हमारे घर में आके बोले कि कैसे चल रही धर्मशाला, कैसे चल रही आप, पागल हो गया ऐसी बातें बोलता है, तो है तो वही ना, धर्मशाला में होता क्या, कोई यात्री आता है बसेरा करता है फिर चला जाता है। वैसे ही एक पूरा सेट परिवार का आया, वो रहा एक साथ, जैसे वो जर्नी खत्म हुई वो गया, फिर दूसरा आता, और कई बार तो उनसे संबंधित भी नहीं, और दूसरे कोई वो घर ही खरीद लेते हैं, वो लोग आके रहते हैं फिर वहां पे। तो यहां पर प्रभुपाद एकदम सिंपल कमेंट्री दे रहे हैं कि चाहे आप नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, बिलीवर और नॉन बिलीवर, इतना सिंपल सिद्धांत है कि केवल जो आपके सामने जो व्यक्त दिख रहा है केवल उसी में अपनी मति मत लगा के रखो, जितना आवश्यक है उतना ही लगाओ। जैसे कि जब आप यात्रा कर रहे हो ट्रेन से, तो जितना आवश्यक है उतना ही सामान ले जाओ, और जितने समय आवश्यक है उतना ही समय बैठो, वो यार्ड में जा रही ट्रेन उसके साथ मत जाओ। अब अंततः ये प्रश्न है कि अर्जुन ये जो शोक कर रहे हैं, क्या ये पूर्ण रूप में भौतिक है? क्या किसी को अपने व्यक्त परिवारजनों के विषय में शोक करना ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का? नहीं, भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं, भक्ति के मार्ग में सारी भावनाएं व्यक्त एक भक्त करता है, तो कौन सा शोक आवश्यक है? कुछ उदाहरण, भरत महाराज जिन्होंने पूरा राज कारभार छोड़ा, अपने रानियों को और युवराजों को छोड़ा, पूरे पूरे भारत राज्य को छोड़ा, और वो गए और वो हिरण से आसक्त हो गए, भागवत में हम ये कथा सुने हैं। और फिर जब वो हिरण बने तो हिरण की योनि में उन्होंने फिर पश्चाताप किया, शोक किया कि मैंने इतना भाव भक्ति के स्तर पर आने के बाद भी मैं एक हिरण से आसक्त हुआ और हिरण बनना पड़ा मुझे। तो भरत महाराज जो शोक किए, वो शोक के बाद वो अपने आप को सुधारे, जड़ भरत के रूप में पैदा हुए और फिर अंततः भगवत धाम गए। तो वो जो उनका शोक था उसका फल क्या था, फल स्वरूप क्या हुआ कि वो भगवत धाम पहुंचे, उस शोक के वजह से, उस शोक से वो अपने आप को सुधारे। अजामिल का भी यही उदाहरण है कि अजामिल ने जब यमदूतों को देखा तो अजामिल ने शोक किया कि मैंने क्या गलती की, क्या मेरे पास था, मैं ऐसे ब्राह्मणत्व का पालन कर रहा था, उसे छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर मैं एक वैश्या के साथ संग करने लगा। और फिर उस शोक के पश्चात 12 वर्ष जब उन्होंने हरिद्वार में जाकर भक्ति की भगवान की, तो भगवत धाम अजामिल प्राप्त हुए। सौबरीमणि मछलियों को देखकर प्रभावित हुए और मंधाता, राजा मंधाता के 50 बेटियों के साथ उन्होंने शादी की, उसके पश्चात फिर उन्हें समझ में आया कि मैं जमुना में, ब्रजमंडल में, जमुना के अंदर, वो भी कार्तिक के महीने में, सोचिए भगवान की भक्ति में तपस्या में मैं लगा था और मैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मेरा क्या हाल हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अपने आप को सुधारा, सही पथ पर लाए और अंततः स्वयं अर्जुन। अर्जुन पूरी भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो जाता है, अर्जुन पुनः स्थापित हो जाते हैं अपनी भक्ति में, भगवान के दृढ़ शरणागति में। उसके पश्चात जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध होता है तो अर्जुन शोक करते हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन शोक नहीं करते। इतनी भगवत गीता, इतने सारे श्लोक शोक के विषय में सुनने के पश्चात भी अर्जुन शोक करते हैं अभिमन्यु के वध के पश्चात, लेकिन वो शोक, उसकी सराहना की गई है। प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज अर्जुन इज अ डिवोटी ही हैज दोस सेंटिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने उस शोक के पश्चात अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो जितने भी उदाहरण हैं, सौबरी मुनि, अजामिल, भरत महाराज, अर्जुन, इन्होंने शोक किया लेकिन शोक करने के पश्चात अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो भक्त कोई पत्थर दिल का नहीं होता, उसके हृदय में भावनाएं होती हैं लेकिन वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता। शोक से यदि उसका कर्तव्य से वो च्युत हो जाए तो वो भौतिक है। जैसे कि भगवद गीता सुनने से पहले अर्जुन का ये शोक गांडीव छुड़ा दिया, और अभिमन्यु के वध के पश्चात जो शोक अर्जुन ने किया, गांडीव को उठाया, भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के आदेशों का अर्जुन ने पालन किया। इसलिए भगवान हालांकि शोक के विषय में इन सब श्लोकों में कह रहे हैं, लेकिन अंततः जो भगवान भक्ति के विषय में अर्जुन को बताने वाले हैं, तो भक्ति मार्ग में हम चाहे शोक अवस्था में हो, चाहे हम प्रसन्न अवस्था में हो, जो भी अवस्था में हो, उसे हमें भगवान से कनेक्ट करना है, और तभी जाकर हम भगवान जो चाहते हैं उसे स्थापित कर सकें। हरे कृष्ण। तो अब इसके बाद वाला श्लोक भगवान आत्मा के विषय में इतना सब कुछ अब सुनाएं। अब भगवान कहेंगे कि ये जो आत्मा है इसमें ऐसा आश्चर्य है अर्जुन, आश्चर्यवत पश्यति, कि तुम देखकर भी देख नहीं पाओगे कि ये आत्मा कितना आश्चर्यजनक है। हमारा अगले बुधवार का श्लोक है आत्मा द मोस्ट सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग एंटिटी। हरे कृष्ण।